रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल सरकार के मुख्य सचिव पद पर लीला देवी गढ़तौला हुई नियुक्त। स्वदेशी और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेश का वातावरण बनाना जरूरी है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। ललितपुर में चार लोगों में हुई हैजा की पुष्टि। दूरदराज के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का प्रवर्धन करने की बात पर ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का ने दिया जोर। और पश्चिम अफ्रीकी देश मॉरिटेनिया के समुद्र तट पर हुई जहाज दुर्घटना में अब तक 25 प्रवासियों की मौत, 200 के करीब लापता। अब समाचार विस्तार से। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी को खतरे की सूची में रखने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ है। भारत की नई दिल्ली में 21 जुलाई से जारी विश्व संपदा समिति यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन अंतर्गत आज मसौदे के ऊपर हुए विचार विमर्श में लुम्बिनी को खतरे की सूची में न रखने का निर्णय लिया गया। नेपाल की ओर से लुम्बिनी विकास कोष के उपाध्यक्ष डॉ लहार क्याल लामा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव डॉ गणेश प्रसाद पांडे सहित की टोली सेशन में सहभागिता के लिए नई दिल्ली में है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 21 देशों में से भारत सहित 19 देशों के प्रतिनिधियों ने बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी को विश्व का अनुपम महत्व वाला स्थल बताते हुए कहा कि नेपाल को सुधार के लिए और समय दिया जाना चाहिए और खतरे की सूची में न रखने के पक्ष में खड़े हुए। बता दें कि बैठक में लुम्बिनी को खतरे की सूची में रखने के मसौदे पर भारत ने संशोधन प्रस्ताव रखा, जिसके पक्ष में 21 में से 19 राष्ट्र खड़े हुए। गौरतलब है कि यूनेस्को लुम्बिनी में संपदा संरक्षण, विपरीत गतिविधियों और निर्माणों को कारण बताते हुए खतरे की सूची में रखने की चेतावनी नेपाल को सन 2002 से देता आ रहा था और सन 2022 में तो यूनेस्को ने पत्र भेजकर ही सचेत किया था। लुम्बिनी को विश्व संपदा समिति के सचिवालय के खतरे की सूची में रखने का मसौदा तैयार करने के बाद पर्यटन मंत्रालय लुम्बिनी विकास कोष के अधिकारियों ने कूटनीतिक पहल की थी। सरकार ने नेपाल सरकार के मुख्य सचिव पद पर लीला देवी गढ़तौला को नियुक्त किया है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबार में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने कार्यवाहक मुख्य सचिव गढ़तौला को मुख्य सचिव नियुक्त करने का निर्णय किया। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने दी। इसी तरह राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर पालपा के डॉ शिवराज अधिकारी नियुक्त हुए हैं। वहीं सदस्य पदों पर महोत्तरी के डॉ आरपी बिछार, धनुषा के डॉ रमेश प्रसाद सिंह, अर्घाखासी के डॉ प्रकाश कुमार श्रेष्ठ को मनोनीत हुए हैं। इसी तरह झापा की डॉ गीता कुमारी पौड़ेल अधिकारी, अर्घाखाची के डॉ जय बहादुर टंडन और दारचूला के गंगा दत्त अवस्थी भी आयोग के सदस्य के तौर पर नियुक्त हुए हैं। ललितपुर में चार लोगों में हैजा संक्रमण की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में हुए प्रशिक्षण में हैजा की पुष्टि होने की जानकारी इपिडीमियोलॉजी तथा संक्रामक रोग नियंत्रण महाशाखा के इपिडीमियोलॉजी तथा महामारी व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डॉ मुकेश पौड़ेल ने दी। सौर्य एयरलाइंस के विमान हादसे में मारे गए लोगों के शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में सभी 18 मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम हो रहा है। ये बात अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिकल विभाग के प्रमुख डॉ गोपाल प्रसाद चौधरी ने बताई। उन्होंने बताया कि 72 घंटे के अंदर सभी शवों का पोस्टमार्टम हो जाएगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश में स्वदेशी और विदेशी निवेश आकर्षित करने के वातावरण बनाने के लिए कुछ सुधार करने होंगे। निवेश बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट से आर्थिक वर्ष 2080-81 का कार्य संपादन प्रतिवेदन लेते हुए बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने कार्यवाहक महामंत्री कविन्द्र बुरला कोटी के संयोजकत्व में विधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठित किया है। आज रासपा की बैठक से पार्टी के विधान में आवश्यक परिमार्जन तथा संशोधन के लिए कार्यवाहक महामंत्री बुरला कोटी सहित 11 सदस्यीय कार्यदल गठित किया है। बता दें कि आज की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झा ने कहा कि भाद्र के दूसरे सप्ताह में कर्णाली अभियान कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति ने माध्यमिक तह कक्षा 12 पास करने के बाद नो ऑब्जेक्शन लेटर दिए जा सकने के विषय पर सहमति बनाई है। सरकार द्वारा छात्रवृत्ति संबंधी आईन 2021 में मौजूद व्यवस्था को संशोधित करने के लिए कुछ नेपाल आईनों पर किए गए प्रस्ताव पर आज हुए विचार विमर्श के बाद समिति ने माध्यमिक शिक्षा प्लस टू पास करने के बाद नो ऑब्जेक्शन लेटर ले सकने की व्यवस्था रखने की सहमति हुई है। अब तक एसी तक को ही माध्यमिक और प्लस टू 10+2 को माध्यमिक माना जाता था पर माफ कीजिएगा उच्च माध्यमिक माना जाता था पर अब कक्षा 12 तक को माध्यमिक शिक्षा के भीतर रखा गया है, इसलिए सरकार ने स्पष्टता के लिए संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रतिनिधि सभा के सांसदों ने विद्यालय तह में लैंगिक शिक्षा अनिवार्य करने पर जोर दिया है। संसद के महिला तथा सामाजिक मामला समिति की आज के बैठक में सांसदों ने कहा कि विद्यालय तह के बच्चों को लैंगिक शिक्षा देने से भविष्य में लैंगिक हिंसा स्वतः कम होगी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति ने लोक सेवा आयोग से सिफारिश होकर आए 27 जनशक्तियों को नियुक्त किया है। आज रेडियो नेपाल के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक बुद्धि बहादुर केसी ने विश्वास जताया कि नवप्रवेशी कर्मचारी रेडियो नेपाल की पहुंच वृद्धि और प्रसारण को प्रभावकारी बनाएंगे। मौके पर नायब कार्यकारी निर्देशक खगेन्द्र खत्री ने कहा कि सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ने से खुद का और संस्था का विकास होगा। इसी तरह रेडियो नेपाल ने एक कार्यक्रम आयोजित कर सेवानिवृत्त हुए दो कर्मचारियों मुख्य समाचार संपादक हरिशरण लामिछाने और प्रशासकीय अधिकृत दावा तामांग की विदाई की है। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने कहा कि दूर दराज के जनता में पहुंचने के हिसाब से वैकल्पिक ऊर्जा का प्रवर्धन किया जाना चाहिए। आज वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दूर दराज की जनता को लक्षित करके योजना बननी चाहिए। संखुआ सभा स्थित जिला अस्पताल खांदबारी में वायरल फीवर और डेंगू का मरीज बढ़ रहा है। आषाढ़ के अंतिम हफ्ते से अस्पताल में बुखार और डेंगू के मरीज बढ़ने के कारण बेडों का अभाव होने लगा है, ये जानकारी अस्पताल के सूचना अधिकारी शेखर खत्री ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पश्चिम अफ्रीकी देश मारेटेनिया की समाचार एजेंसी के अनुसार देश के समुद्र तट पर एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें अभी तक 25 प्रवासियों के मौत की खबर है और कई लापता भी हैं। यह घटना राजधानी नौआकचाट के पास हुई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने कहा कि 190 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है और लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। एक तटरक्षक कमांडर ने बताया कि मारेटेनियाई तटरक्षक ने 103 प्रवासियों को बचाया है और 25 शव बरामद किए हैं। IOM ने कहा कि लगभग 300 लोग एक लकड़ी की नाव पर सवार होकर निकले थे और 22 जुलाई को नाव के पलटने से पहले ही समुद्र में 7 दिन का सफर कर रहे थे। कोस्टगार्ड के पहुंचने से पहले 15 लोगों की मौत हो चुकी थी जबकि 10 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब मौसम। अगले 24 घण्टों में काठमाण्डू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमाण्डू घाटी का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल सरकार के मुख्य सचिव पद पर लीला देवी गौरतौला हुई नियुक्त। स्वदेशी और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेश का वातावरण बनाना जरूरी है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। ललितपुर में 4 लोगों में हुई हैजा की पुष्टि। दूरदराज के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का प्रवर्धन करने की बात पर ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का ने दिया जोर। और पश्चिम अफ्रीकी देश मॉरिटेनिया के समुद्र तट पर हुई जहाज दुर्घटना में अब तक 25 प्रवासियों की मौत, 200 के करीब लापता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।